ओम शांति। राजयोग शिविर नो आज ये दूसरा सत्र के जिसमें राजयोग का मुख्य आधार स्वयं की पहचान, आत्म के यथार्थ पहचान क्या है, जब तक इस रहस्य को नहीं समझा तब तक हम अपने भीतर की शक्तियों को उजागर नहीं कर सकेंगे। और उसी के लिए ये फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट हम कई सदियों से सुनते आए हैं, नो थाई सेल्फ रियलाइज थाई सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। क्योंकि जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है तब तक गॉड रियलाइजेशन नहीं है। अभी भी बहुत सुंदर एक गीत हम सभी ने सुना, जिन गीतों के शब्दों में भी यही बात थी कि आत्मचिंतन से होगा आत्म परिवर्तन। स्वयं का परिवर्तन कौन नहीं चाहता, हर एक व्यक्ति ये जरूर चाहता है कि मेरे जीवन में परिवर्तन आए, क्योंकि परिवर्तन से ही जीवन में नवीनता रहती है। अगर वही का वही जीवन हो तो उस जीवन शैली से भी हम धीरे धीरे उबने लगते हैं। नवीनता चाहता है, परंतु उस नवीनता को कायम बना के रखना, उसके लिए जब तक अपनी यथार्थता को नहीं समझा है, उसका अनुभव नहीं किया है कि उसकी शक्ति क्या है, तब तक हम उसको जीवन में कायम भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास भीतर में शक्ति है, लेकिन वो शक्ति सुषुप्त है, उसको उजागर करनी पड़ती है। आत्मा के पास अथाह क्षमता, अथाह शक्ति है। आत्मा की सूक्ष्म शक्तियों के पास भी अथाह क्षमता है, सिर्फ उसको जानने की जरूरत है, और जानने से ही उसको जीवन में महसूस कर पाएंगे। उसको अनुभव करने से वो कायम रह सकती है। गीता के अंदर भी जब भगवान ने अर्जुन से यही कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें वो योग सिखाता हूं जिससे कि तुम राजाओं के राजा बन सकते हो। राजाओं के राजा अर्थात सर्वप्रथम इंद्रियों के ऊपर राज्य प्राप्त करना, और जिसने अपने इंद्रियों के ऊपर राज्य प्राप्त किया है वो अपने मन को भी सहज जीत सकते हैं, जिसके लिए ही कहा जाता मन जीते जगत जीत। जिसने मन को जीता है उसने जगत को जीता बराबर है। लेकिन मन को जीतने के लिए अपनी इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त करने के लिए वो शक्ति मैं कौन हूं, बहुत कालों से ये सवाल मनुष्य के मन के अंदर बना रहा है, मैं कौन, मेरी वास्तविकता क्या है। ये तो हर एक जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, परंतु वो आत्मा कैसी है? विज्ञान ने भी कई प्रयत्न किए कि उस चैतन्य शक्ति को हम देख सके, परंतु नहीं देख पाए, क्योंकि वो कोई स्थूल चीज नहीं है जो इन आंखों से दिखाई दे। हाँ, वो जो कार्य कर रही है शरीर के इंद्रियों के माध्यम से, उसको अवश्य देख सकते हैं। जीवन में उसकी अभिव्यक्ति को हम अवश्य देख सकते हैं, परंतु वो चैतन्य शक्ति का जब तक ज्ञान चक्षु से साक्षात्कार न किया जाए, तब तक उसको समझना कठिन है। ज्ञान चक्षु से साक्षात्कार अर्थात कोई इन आंखों से देखने की बात नहीं है, समझने की जरूरत है। ये शरीर को तो अच्छी तरह हम जानते हैं कि ये शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ, और इसीलिए शरीर जीवन जीने के लिए वही 5 तत्वों को डिमांड करता है। आज हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए 5 तत्व चाहिए। इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, उसको भी जीवन जीने के लिए कुछ गुणों की आवश्यकता है। जो गुण न होने से जीवन में एक बेचैनी का अनुभव करते हैं। जैसे शरीर को एक तत्व भी न मिले तो सफोकेट होने लगते हैं, इसी तरह आत्मा को ये 7 गुणों में से एक गुण की भी कमी हो जाए तो आत्मा भी फ्रस्ट्रेशन का अनुभव करती है, सफोकेट होने लगती है। इसीलिए व्यक्ति जीवन में ये जरूर महसूस करता रहता है कि कुछ कमी है। भले भौतिक उपलब्धियां सब कुछ हो, उसके बाद भी कमी की महसूसता होती है, तो वो कमी कौन सी है जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप, आत्मा सतोगुणी स्वरूप है, वो 7 गुण उसको जीवन जीने के लिए चाहिए। सोचो, बाकी सब कुछ हो लेकिन जीवन में शांति न हो, चलेगा? टेंशन ही टेंशन हो, नहीं चलता है। कितनी बेचैनी का अनुभव होता है। जीवन में सब कुछ हो लेकिन सुख न हो, दुख ही दुख हो, तो वो जीवन कैसा होगा? जीवन में सब कुछ हो लेकिन आनंद न हो, उत्साह न हो, तो वो जीवन कैसा होगा? जीवन में सब कुछ हो लेकिन प्रेम न हो, नफरत ही नफरत मिले, तो वो जीवन कैसा होगा? इसलिए जीवन जीने के लिए ये 7 गुण चाहिए जो आत्मा की वास्तविकता है। इसलिए कहा आत्मा सतोगुणी है, 7 गुणों का एसेंस है, जिसको अनुभव करने के लिए मनुष्य ने भिन्न भिन्न तरीके अपनाए। सबसे पहला तरीका हमने जीवन में ये सात गुणों को अनुभव करने के लिए जो अपनाया, संबंधों में अपेक्षा। व्यक्ति एक दूसरे से अपेक्षा रखता है कि ये व्यक्ति द्वारा मुझे शांति प्राप्त हो, ये व्यक्ति द्वारा मुझे सुख की प्राप्ति हो, ये व्यक्ति द्वारा मुझे प्रेम मिले। परंतु अपेक्षा रखने से कभी प्राप्त नहीं होता है, और ये प्रैक्टिकल हमने जीवन में अनुभव किया कि जहां भी अपेक्षा रखी वहां निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिला। क्योंकि जीवन में ये संसार का कुछ अनादि नियम है, इटर्नल लॉज है, जिस लॉज के आधार पर ये संसार का कार्य व्यवहार भी चलता है। और ये इटर्नल लॉ है कि व्हाट यू गिव यू गेट, जो हम दूसरों को देंगे वही हमें प्राप्त होगा। अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे दूसरों से भी वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। अगर मुझे दूसरों से सहयोग चाहिए तो मुझे पहले सहयोग देना होगा। जो देंगे वही मिलेगा। हम किसी को गाली दे और अपेक्षा रखे कि ये हमारे पर प्रेम के शब्द या फूल बरसाएं, कभी नहीं होगा। अगर गाली देते हैं तो गाली मिलती है, सहयोग देते हैं तो सहयोग मिलता है, किसी से प्रेम भरा व्यवहार करते हैं तो प्रेम मिलता है। जो देते हैं वही प्राप्त होता है, ये संसार का अनादि नियम है। इसलिए अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं हुआ। कुछ समय पहले हम ट्रेन में जा रहे थे, हमारे सामने की सीट पर एक बहन बैठी थी जिनके दो बच्चे थे, एक 3 साल का था, एक 5 साल का था। दोनों बच्चे एक खिलौने से खेल रहे थे, अचानक दोनों में लड़ाई हो गई। दोनों को वही खिलौना चाहिए। माँ ने वो बड़े बच्चे से कहा, बेटा इसको दे दो। वो बच्चे ने, 5 साल वाले बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, यही शब्द मुझे क्यों कहा गया, इसको क्यों नहीं कहा गया? कोई भी हो आप में से, एक ही बात कहेंगे, वो बड़ा है, तुम छोटा है। उस माँ ने भी बच्चे से यही कहा कि तुम बड़ा है, ये छोटा है। 2 मिनट तक वो बच्चा सोचता रहा। 2 मिनट के बाद अपनी माँ से कहता है, मैं तो जीवन भर इससे बड़ा ही रहूंगा। भावार्थ ये था कि ये तो कभी मेरे से बड़ा होने वाला है ही नहीं, जिंदगी भर ये तो 2 साल मुझसे छोटा ही रहेगा। उसका प्रश्न ये था, क्या हर बार मुझे बदलना होगा, मुझे ही देना होगा? क्या कहेंगे? अगर हाँ कहें तो अन्याय है, ना कहो तो उसी वक्त वो कहेगा इसको कहो मुझे दे दे। चालू ट्रेन है, दूसरा खिलौना है नहीं, क्या कहेंगी माँ? अब उस वक्त वो बच्चे ने बहुत इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछा है, 5 साल का है, और उसने जब अपनी माँ से पूछा कि मैं हमेशा ही इससे बड़ा रहूंगा, क्या हर बार मुझे बदलना होगा? अब क्या कहना चाहिए, हाँ कहो या ना कहो? वो माँ भी मूंझ गई। हमने भी जब इस दृश्य को देखा, हंसी आ गई कि देखो आजकल के बच्चे कैसे प्रश्न पूछते। हम जब छोटे थे, हमें जब कहा गया कि आप बदल जाओ, दे दो, हमने दे दिया। कभी ये सोचा भी नहीं, न प्रश्न पूछ सके हम। लेकिन आजकल के बच्चे को एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए। उस बच्चे को हमने बुला करके पूछा, तुम्हें वो खिलौना चाहिए? कहा हाँ चाहिए। मैंने कहा अभी तेरा भाई तेरे को ये खिलौना दे देगा। वो मुझे कहने लगा नहीं देगा। वो अपने भाई को और अच्छी तरह से जानता था, तो कहने लगा नहीं देगा। हमने कहा और दे दिया तो? चैलेंजिंग लगा उसको, एक्सपेरिमेंट करके देखते। हमने चालू ट्रेन थी और कोई खिलौना तो था नहीं, हमने कहा चलो एक खेल खेलते हैं। क्या खेल करें? तो हाथों को रब करके उसको कहा तुम मारना, जहां मिस करो वहां मैं तुम्हें मारूंगी। ठीक है, मेरे साथ वो खेल रहा था, लेकिन उसका ध्यान वहां था कि वो छोटा खिलौना देता है या नहीं देता है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट था। वो छोटा खिलौना पकड़ के बैठा था, खेल नहीं रहा था। उसका ध्यान यहां था कि ये क्या खेल रहे हैं। जब उसको लगा कि ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो खिलौना यूं छोड़ करके फिर मुझे कहने लगा अब मेरे साथ भी करो। वो बड़े बच्चे ने वो खिलौना उठा लिया। एक साल के बाद कहीं फिर मुलाकात हो गई उस बहन से। जब उनको पूछा कि अब आपके बच्चे कैसे हैं, कहने लगी उस दिन के बाद जीवन में बड़े बच्चे ने एक लेसन सीख लिया। क्या सीख लिया? कि जो मुझे चाहिए वो मुझे देना होगा। और इसलिए जब कभी कोई झगड़ा होता है उसके बाद तुरंत ही वो उसको दे देता है, और जाकर के फिर और कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग निकालता है कि वो छोटा उसको छोड़ करके उसी के तरफ लग जाता है, और तब वो उठा करके ले जाता है, झगड़ा ही समाप्त। तो जीवन के अंदर हमें जो चाहिए वो पहले हमें देना होगा। अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं होता है, ये जीवन का सत्य है। और इसलिए जब अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं होता है, तब मनुष्य ने दूसरा तरीका अपनाया। कौन सा? कर्म करो। इसलिए आज संसार में विभिन्न कर्म कर रहे हैं। हर कर्म के पीछे लक्ष्य क्या है? तो यही कहते हैं, हर कर्म के पीछे लक्ष्य है ये सात गुणों को अनुभव करना। आज इंसान धन कमाता है। धन क्यों चाहिए? तो कहेंगे धन होगा तो सुख शांति से जी सकेंगे, इसीलिए धन चाहिए। करोड़पति से पूछ लिया जाए सुख शांति आ गई तो क्या कहेंगे? नहीं आई। कई लोग समाज सेवा कर रहे, पूछो समाज सेवा क्यों करते हो? कहते आनंद मिलता है। पूछो आनंद मिला तो क्या कहते? अरे बहुत पॉलिटिक्स है, आनंद कहाँ? हमने तो सोचा था सेवा करने में आनंद मिलेगा, लेकिन वहां भी पॉलिटिक्स आ गई है तो आनंद नहीं मिला। कई लोग गंगा स्नान करने जा रहे, पूछो गंगा स्नान क्यों करने जाते हैं? कहते आत्मशुद्धि के लिए। अच्छा, आत्मशुद्धि हो गई? ऐसे ही आत्मशुद्धि हो जाती थी फिर तो सारे क्रिमिनलों को ले जाकर गंगा स्नान करा देना चाहिए। जेल में बंदी क्यों रहे? आत्मशुद्धि हो गई, परिवर्तित हो गया। ऐसे कोई आत्मशुद्धि नहीं होती है। कई लोग सत्संगों में जा रहे, पूछो सत्संग में क्यों जाते हैं? कहते ज्ञान प्राप्ति के लिए। अच्छा, ज्ञान आया? सत्संग सुनने के बाद घर में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये ज्ञान भी नहीं आता है। तभी तो कई बार बच्चे भी माँ बाप से कहते हैं, वहां सुनकर के यही आए आप। कई लोग शादियों पर जा रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, पूछो ये शादियों पर क्यों जाते हैं, पार्टीज में क्यों जाते हैं? कहते समाज में रहना है तो सबके साथ हमारा प्यार भरा संबंध बना रहे इसके लिए। पूछो बना तो क्या कहते हैं, अरे एक को खुश किया दो नाराज हो गए। बना कहां, बिगड़ता ही जा रहा है। तो जीवन में विभिन्न कर्म किए सिर्फ ये सात गुणों का अनुभव करने के लिए, लेकिन ये सात गुणों का अनुभव नहीं हुआ और इसलिए जीवन में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया, तनाव बढ़ता गया, क्योंकि आत्मा की बैटरी इतनी लो हो गई है कि अब उसको चार्जिंग चाहिए। और इसलिए तीसरा तरीका अपनाते हैं। कौन सा तीसरा तरीका, कि भगवान को याद करो, वही स्रोत है, वहीं से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए रोज भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु शांति दो, हे प्रभु सुख दो, हे प्रभु तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। रोज मांगते रहे, मिल गया। मांगने से नहीं मिलता है, स्रोत वही है, वहीं से प्राप्त होगा, लेकिन मांगना ये कोई सही तरीका नहीं है। उसके लिए तो आत्मा का कनेक्शन जोड़ने की जरूरत है। जो कनेक्शन टूटा हुआ है, जब वो कनेक्शन जुटे तब वो करंट मिले, और इस कनेक्शन का ही नाम है योग। इस समय जो स्थिति है वो है वियोग की। जब योग हो जाए आत्मा का परमात्मा के साथ, तब वो शक्तियों को हम अपने जीवन में अनुभव कर सके। कई बार कई लोग यही सवाल पूछते हैं, आत्मा का ज्ञान जानने से हमें जीवन में क्या मिलेगा, क्यों जानना चाहिए आत्मा है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है तब तक जीवन में जो चाहिए सुख शांति आनंद प्रेम ये कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है, ये सातों गुणों का अनुभव नहीं हो सकता है। इसीलिए आज संसार में जब ये ज्ञान का अभाव है तभी तो व्यक्ति के जीवन में क्रोध है, टेंशन, ये सब विकृतियां बढ़ती जा रही है, विकृत अनुभव होने लगा है। उससे छूटना चाहता है इंसान, छटपटा रहा है, लेकिन कहां से ये सात गुण प्राप्त हो ये मालूम नहीं है। इसीलिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता अर्थात अध्ययन द्वारा आत्म उन्नति करना। अध्ययन, कौन सा अध्ययन? ये आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण जब करते हैं, उसको जीवन में जब धारण करते हैं, तब ये सातों गुणों को विकसित कर सकते हैं और तब आत्म उन्नति का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। इसके बिना जीवन जीवन नहीं लगेगा, जीवन एक बोझ लगने लगेगा। ये सातों गुण जीवन में क्यों चाहिए? क्योंकि उसी के साथ हमारे स्वास्थ्य का भी बहुत गहरा संबंध है। ज्ञान इसीलिए चाहिए क्योंकि उससे हमारी नर्वस सिस्टम ठीक रह सकती है। इसी तरह शांति क्यों चाहिए? तो शांति जीवन में आने से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक रहती है। जब व्यक्ति रिलैक्स मूड में है तब उसका रेस्पिरेशन कैसे होता है? सांसों की गति रिलैक्स रूप में चलती है, नॉर्मल चलती है। और जब टेंशन में होता है तब उसकी सांसों की गति भी एबनॉर्मल चलने लगती है। फिर प्राणायाम करके उसको नॉर्मल करना पड़ता है। आज इसीलिए इसकी जागृति क्यों बढ़ती जा रही है? प्राणायाम करो, सांसों की गति को नॉर्मल करो। लेकिन अगर भीतर मन के अंदर टेंशन है, उसका इलाज नहीं किया है, तो कितना भी प्राणायाम कर ले उसके बाद भी जो फर्क आना चाहिए वो नहीं होता है। इसी तरह सुख किस लिए चाहिए? क्योंकि सुख का कनेक्शन हमारी पेट की सिस्टम के साथ है। आज व्यक्ति भोजन करने बैठा हो, सिंपल भोजन हो या बढ़िया भोजन खाने बैठा हो, लेकिन खाने समय किसी ने आकर उसको दुखद समाचार दे दिया, उसके बाद एक भी चीज खाने की इच्छा होगी? रुचि ही खत्म हो जाती है। और उसके बाद भी अगर उसने खा लिया तो कहीं ना कहीं पेट अपसेट हो जाता है, उसका बदहजमा होने लगता है। और जब व्यक्ति सुख की स्थिति में है तब उसका पेट भी नॉर्मल है, नहीं तो कहीं गैस बनने लगती है, कहीं एसिडिटी होने लगती है, क्योंकि अंदर में मन की स्थिति सुख के आधार पर नहीं है, कहीं न कहीं कोई दुख अंदर समाया हुआ है। इसी तरह पवित्रता का संबंध हमारी पंच इंद्रियों के साथ है। आज यही पंच इंद्रियों के अंदर आसक्ति आ गई है, इसीलिए जीवन के अंदर भी भीतर के सिस्टम में भी अशुद्धि आ गई है। शक्ति का संबंध हमारे मसल्स के साथ है। आज व्यक्ति रोज एक्सरसाइज करता हो लेकिन समय पर किसी ने उसका विल पावर तोड़ दिया, उसके बाद छोटी सी परिस्थिति को फेस करने की ताकत उसमें नहीं होती है। और व्यक्ति को जब जीने की इच्छा होती है और नेचुरल कैलेमिटीज आ जाते हैं, तब हम सुनते हैं कि हॉस्पिटल में जो एकदम कमजोर व्यक्ति है उसके अंदर भी पता नहीं कहां से एक विल पावर आ जाता है और दौड़ने लग जाते हैं। कहां से ताकत आई जो किसी के सहारे के बिना उठ नहीं पाते थे, लेकिन भूकंप आया तो दौड़ने लग जाते हैं। इसी तरह प्रेम का संबंध हमारे हार्ट के साथ है। किसी को प्यार में धोखा मिले या विश्वास में धोखा मिले तो कहां दर्द होता है? सिर में या पेट में? छाती में दर्द हो गया। आज लोगों को हार्ट अटैक्स क्यों आने लगे हैं? नंबर वन पर यह बीमारी जा रही है क्योंकि हर जगह इंसान देखता है, जहां जिसके साथ भी प्यार भरा संबंध होता है वहां उसको स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए एक धोखा महसूस होता है। और जहां ये धोखा मिला तो उसका पहला असर कहां आया? छाती में दर्द हो गया। और इसी तरह आनंद का संबंध हमारे हार्मोनल सिस्टम के साथ है। जहां आनंद ही नहीं है, उदासी गम है जीवन में, तो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। टेंशन के कारण कहीं किसी ने विश्वासघात किया और एकदम जीवन में उदासी आ जाती है, दिल ही हमारा टूट गया, तो हार्मोन्स, और ये अगर कुछ समय तक चलता रहा तो उसका प्रभाव हमारी हार्मोनल सिस्टम पर आना ही है। और जहां के हार्मोन्स वीक है वहां उसका अटैक होना ही है। इम्बैलेंस बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाता है। इसीलिए तो आज डॉक्टर्स लोग भी जो पेशेंट होते हैं उसके परिवार के सदस्य को यही कहते हैं, इसको कोई ऐसा वैसा समाचार नहीं देना, जितना ये खुश रहेगा ना जल्दी ठीक होगा। आज इंसान के जीवन में खुशी नहीं है। खुशी रहे उसके लिए संसार में लाफिंग क्लब्स शुरू हो गए हैं। खुश रहना चाहता है इंसान, लेकिन खुशी मिलती नहीं है। घर में हंस नहीं सकता है, इसलिए बगीचे में जाकर बेचारे को हंसना पड़ रहा है। सोचो कैसी विडंबना है हमारे जीवन शैली की, कि आज हमारी जीवन शैली कैसी हो गई है। और इस जीवन को सकारात्मक बनाना है तो ये सात गुणों की आवश्यकता है। जब तक ये सात गुण नहीं है तब तक जीवन सकारात्मक नहीं हो सकता है। ये सात गुण कहां से प्राप्त होंगे कि जिसके आधार पर हमारे शरीर का भी इतना गहरा संबंध है, कहां से प्राप्त होंगे? आज देवताओं के जीवन में ये सातों गुण थे, इसलिए देवताओं को सदा स्वस्थ दिखाते हैं, कंचन काया वाले दिखाते। कभी कोई कथा में ये नहीं सुनाई देता है कि फलाने देवता को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा या फलाना देवता वैद्य था। नहीं, देवताएं सदा निरोगी काया कंचन काया वाले, क्योंकि ये सातों गुण भरपूर थे उनके जीवन के अंदर। परिस्थिति उनके सामने ही आई, लेकिन क्योंकि आत्मा की बैटरी फुल चार्ज थी इसीलिए परिस्थिति को हैंडल करने की शक्ति थी। और आज इंसान के पास शक्ति नहीं है, क्योंकि ये सातों गुण जो शक्ति है वही तो आत्म शक्ति हमारी बनती है। इसीलिए कहां न कहां कोई न कोई रूप से अपसेट होते ही रहते हैं। कहां से प्राप्त हो ये सातों गुण? उसके लिए ईश्वर ने हमारे भीतर ही एक इनबिल्ट सिस्टम बना के रखी है। जैसे शरीर को जो पांच तत्व चाहिए उसके लिए पंच इंद्रियां है, जिसके माध्यम से हम वो पांचों तत्व को प्राप्त करते हैं, अंदर में लेते हैं। इसी प्रकार ये सातों गुण जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, हमारे भीतर एक इनबिल्ट सिस्टम बनाई है, जिसको हम कहते हैं मन बुद्धि और संस्कार। मन क्या चीज है? मन है आत्मा की सोचने की शक्ति का दूसरा नाम। जितने भी विचार चलते हैं मन के अंदर चलते हैं। विचारों का कनेक्शन जीवन के अनुभवों के साथ है। जैसे विचार चलते हैं वैसे ही जीवन में अनुभव प्राप्त करते हैं। आज जीवन में कईयों को भय क्यों लगता है? क्योंकि उसके विचारों की क्वालिटी वैसी। जीवन में किसी को उदासी क्यों अनुभव होती है? क्योंकि उसकी विचारों की क्वालिटी वैसी है, इसलिए जीवन में उदासी है। खुशी का अनुभव तभी होता है जब जीवन में विचारों की क्वालिटी वैसी है। तो अगर भय का अनुभव कर सकते हैं, उदासी का अनुभव कर सकते हैं, तो शांति का, उमंग का, खुशी का अनुभव नहीं हो सकता है? हो सकता है। विचारों का बहुत गहरा कनेक्शन हमारी मनोवृत्ति के साथ है। मनोवृत्ति कैसे बनती है? वृत्ति शब्द निकला है वृत्त से, सर्कल। वो सर्कल कैसे बना? बार बार कोई विचार चलाते रहने से वो वृत्त तैयार होता है अंदर, विचारों का वृत्त। और उसी वृत्त से वृत्ति बनती है। इसीलिए कहा जाता कि कोई भी विचार बार बार करने से हमारी मनोवृत्ति भी वैसी बन जाती है, हमारे जीवन की मान्यताएं धारणाएं वैसी बन जाती है और वही चीज हम अनुभव करते हैं। इसीलिए कहा विचार एक बीज की तरह है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही तो फल मिलेगा। अगर बीज अशुद्ध है तो फल कैसा मिलता है? शुद्ध नहीं मिल सकता है। सकारात्मक विचार करने से वो शक्ति का संचार कर सकते हैं, नकारात्मक विचार करने से मन की शक्ति क्षीण होने लगती है। इसीलिए विचार के लिए कहा गया जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो चिंतन की क्वालिटी को देखना है हमें और जीवन के अंदर अपनी क्वालिटी को बेहतर बनानी है। सकारात्मक जीवन शैली के लिए नकारात्मक सोचने से जीवन सकारात्मक नहीं हो सकता है। सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं, वो अनुभव करना चाहते तो उसके लिए विचारों की क्वालिटी वैसी होनी जरूर है। अगर विचारों की क्वालिटी वैसी नहीं तो जीवन कभी सकारात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अगर परिवर्तन लाना है तो थोड़ा सा परिवर्तन हमारी विचारधारा में लाना है और कुछ परिवर्तन नहीं करना है। जो सोचने का ढंग है वो सोचने का ढंग में परिवर्तन लाना है। एक कहानी याद आती है कि एक बार एक राजा था और उसका एक मित्र था, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। मित्र था उनका लकड़े का व्यापारी। लकड़े का व्यापारी बहुत धनवान था, राजा के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन वो लकड़े का व्यापारी अपने लकड़े के गोदाम में चला गया, स्टॉक देखने लगा, हर लकड़े का स्टॉक कितना है। देखते देखते चंदन के लकड़े के पास आया, देखा कि बहुत सारा लकड़ा पड़ा है और उसमें कितने पैसे मेरे रुके हुए हैं। अब वो पैसे निकले कैसे? जब तक ये चंदन के लकड़े बिकेंगे नहीं तब तक तो पैसे उसी में रहेंगे। अब पैसे निकालना है उसको तो क्या करे? मन है, सोचने लगा क्या किया जाए। कहा इतना सारा लकड़ा कौन खरीद करेगा? स्वाभाविक है कि तुरंत मनुष्य के मन के अंदर नकारात्मक विचार प्रकट हो जाता है। तो उसके मन में भी विचार आया, अगर कोई मरे तो उसको जलाने के लिए तो काफी सारा लकड़ा यूज हो सकता है। फिर उसके मन में विचार आया, लेकिन साधारण व्यक्ति कोई मरेगा तो उसको तो कोई चंदन के लकड़े में नहीं जलाएगा, बड़ा व्यक्ति मरना चाहिए। अब राजा के साथ उसकी दोस्ती थी तो पहला विचार तो राजा का ही आएगा उसके मन में कि अगर राजा मरे तो उसको जलाने के लिए तो चंदन के ही लकड़े यूज हो सकते हैं और तब ये सारा स्टॉक खत्म होगा। लेकिन अब राजा मरने वाली उम्र में तो है नहीं, तो विचार चलने लगा कि राजा मरे तो कैसे मरे? अभी तो जवान है राजा, कोई मरने वाली उम्र में तो है नहीं। फिर उसके मन में विचार आया कि हाँ, अगर कोई चढ़ाई करे तब तो राजा को मार सकते हैं। लेकिन फिर विचार आया, राजा ये राज्य के ऊपर चढ़ाई भी कोई नहीं कर सकता है क्योंकि सभी आसपास के राज्यों के साथ राजा की अच्छी दोस्ती है, तो कोई चढ़ाई भी तो नहीं कर सकता है। फिर उसके मन में विचार आता है, अगर राजा कोई खत्म कर दे, कोई मार दे, तब तो राजा मर सकता है। लेकिन फिर मन में विचार आया कि राजा को कोई मार भी नहीं सकते क्योंकि प्रजा भी उससे इतनी संतुष्ट है, तो कोई प्रजा भी उसके उसको मारने का काम तो नहीं करेगा। लोभ कैसी चीज है, कहां तक उसको पहुंचा देती है सोच सोच में। फिर उसके मन में विचार आया, अगर राजा को मार सकते तो मैं ही मार सकता हूं। एक तो मेरी चेकिंग होती नहीं है और मैं वहां तक चला जा सकता हूं, लेकिन अगर राजा मरे तो ये सारे चंदन के लकड़े खत्म हो जाए। लेकिन उसके अंदर जो मारने की हिम्मत चाहिए वो हिम्मत थी नहीं, इसलिए सोच चलता रहा, राजा मरे तो कैसे मरे, राजा मरे तो कैसे मरे। इतना परेशान हो गया, रात की नींद उसकी हराम हो गई, रात रात उसको नींद नहीं आती थी, इतना मन परेशान हो उठा। मन के विचारों का तरंग फैलता तो है वायुमंडल के अंदर, वो विचारों का तरंग राजा तक पहुंचता है और राजा वहां सोचता है, ये मेरा मित्र जो है लकड़े का व्यापारी इतना धनवान है, लेकिन किसके लिए पैसा कमाता होगा, उसका कोई वारिस तो है नहीं, उसके आगे पीछे कोई है नहीं, तो ये किसके लिए कमाता है। तब राजा के मन में विचार आता है, अगर ये जो मर जाए तो सारी प्रॉपर्टी राज्य को मिल जाएगी। लेकिन राजा के मन में भी यही विचार कि अभी ये तो जवान है, अभी मरने वाला तो है नहीं, तो ये मरे कैसे। अब दोनों में इतनी दोस्ती, इतना प्यार था, लेकिन अब क्या हो गया, जैसे ही एक दूसरे के सामने आते थे, एक दूसरे के प्रति यही दृष्टि और भाव, ये मरे तो कैसे मरे, वो सोचे ये मरे तो कैसे मरे। दोनों का मन परेशान हो उठा, इतना टेंशन होने लगा, वो सुख शांति आनंद प्रेम सब खत्म हो गया। आखिर ये व्यापारी से रहा नहीं गया। एक दिन वो राजा के सामने आता है और कहता है, मैं एक माफी मांगने आया। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा गुनाह किया है, माफी किस बात की। कहा, गुनाह किया नहीं है, कहीं हो न जाए, इसलिए पहले से मैं माफी मांगना चाहता हूं और आपसे कुछ राय सलाह करना चाहता हूं। कहा, बोलो। व्यापारी कहने लगा, अपनी मन की स्थिति का वर्णन करने लगा और कहा, ये चंदन के लकड़े ने सारा ये विचार उत्पन्न किया है। अब ये विचार ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, रात रात नींद नहीं आती है, ये विचार से मैं मुक्त होना चाहता हूं, आप कोई उपाय सुझाओ कि ये चंदन के लकड़े को खत्म कैसे किए जाए ताकि ये विचार मेरे मन से खत्म हो जाए, क्योंकि जब तक ये निकलेंगे नहीं, ये खत्म नहीं होंगे, तब तक ये विचार भी मेरे मन से निकलने वाला नहीं। राजा ने सोचा, अगर ये माफी मांग रहा है तो मुझे भी मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरे मन में भी तो कुविचार आया। राजा ने भी उससे माफी मांगी, दोनों सोच में बैठे, अब क्या किया जाए, ये चंदन को लकड़े को खत्म कैसे करे। राजा ने कहा, मेरे महल में सब कुछ है, मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं, महल के बाहर जो बगीचा है वहां एक मंदिर का निर्माण करते हैं और उस मंदिर के अंदर चंदन के लकड़े को लगा देते हैं, वायुमंडल में भी खुशबू फैलती रहेगी, जो आएगा उसको शांति का अनुभव भी होगा, शांति सुगंध और इतना सुंदर वातावरण निर्मित हो जाएगा, भजन चलता रहे, आरती चलती रहे, कितना सुंदर वातावरण बन जाएगा। मित्र को भी ये बात अच्छी लगी, पॉजिटिव विचार आया, दोनों का मन शांत हो गया, मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। राजा ने राज्य कोष से पैसे निकाल करके व्यापारी को देना चाहा, व्यापारी ने उस वक्त कहा, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, ये पैसे के लोभ में ही तो ये विचार सारा उत्पन्न हुआ था, ऐसा करते हैं ये पैसे को राज्य कोष से गरीबों का कल्याण हो ऐसी व्यवस्था की जाए। दोनों के मन के अंदर जब सकारात्मक विचार आया, एक के मन के अंदर मंदिर निर्माण करने का विचार और दूसरे के मन के अंदर गरीबों के कल्याण अर्थ उस पैसे को यूज करने का विचार, तब जाके दोनों का मन शांत हुआ, दोनों का प्यार फिर से बढ़ने लगा, दोनों के मन के अंदर आनंद उमंग उत्साह आने लगा। तो जीवन के अंदर नकारात्मक विचार कितने मन को परेशान कर देता है। आज हमारा मन अगर परेशान है, टेंशन है, दुविधा में है, तो उसका कारण है विचार। बस ये विचार को जैसे राजा और मित्र ने परिवर्तन किया, इसी तरह हमें भी अपने विचारों को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वो सारे विचार बुद्धि के पास जाते हैं, बुद्धि उसको समझने का कार्य करती है। लेकिन बुद्धि समझती कैसे है? ईश्वर से सबसे पावरफुल गिफ्ट अगर मिलती है तो वो है विवेक, विजडम। विजडम ऐसी चीज है जिससे यथार्थ अयथार्थ को परख सकते हैं, अच्छा बुरा क्या है उसको परख सकते हैं, दुविधा की स्थिति हमारी खत्म होती है और उस कारण से बुद्धि सही जजमेंट ले सकती है। कई बार हम देखते हैं किसी अच्छे घर के व्यक्ति की बुद्धि जब दुविधा में फंसी होती है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, हर रीति से बहुत सक्षम है, लेकिन जब बुद्धि दुविधा में फंस जाती है तो दूसरे का आधार लेना पड़ता है, आप क्या समझते, मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरा व्यक्ति जो डिसीशन देगा वो अपनी बुद्धि के हिसाब से देगा, और फिर जब गड़बड़ हो जाती है, कुछ उल्टा हो जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है, दूसरे लोग आकर पूछते हैं, अरे आप इतने समझदार, आपने ऐसा डिसीजन कैसे लिया, तो क्या कहते हैं, ये मेरी बुद्धि का कमाल नहीं है, इसकी बुद्धि का कमाल है। भाई इसकी बुद्धि का आधार आपको क्यों लेना पड़ा? आपकी बुद्धि जब इतनी सक्षम है तो उसकी बुद्धि का आधार क्यों लेना पड़ा? तो कहेंगे उस वक्त मेरी बुद्धि दुविधा में फंसी थी, जजमेंट नहीं ले रहे थे और समय आ गया था, जजमेंट लेना जरूरी था, इसलिए इसकी बुद्धि का सहारा लिया। मुझे क्या पता था कि उसकी बुद्धि मेरे से भी गई गुजरी है। कहने का भावार्थ कि बुद्धि इतनी सक्षम है लेकिन आज उसकी बैटरी भी जब डिस्चार्ज हो गई है तो दुविधा की स्थिति में फंसी रहती है, सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं। और देखा गया जब जब जीवन के अंदर सही डिसीजन लिया है तब तब एक सुख का अनुभव हुआ है, सुकून का अनुभव हुआ है, और जब जब जीवन में गलत निर्णय लिया है तब तब जीवन में बेचैनी का अनुभव हुआ है, परेशान हो उठे हैं हम। कहने का भावार्थ कि बुद्धि को सक्षम बनाने के लिए विजडम बहुत जरूरी है। यही आध्यात्मिकता हमारे जीवन के अंदर एक खूंटती कड़ी है। आज आध्यात्मिकता की जरूरत क्या है? कई लोग पूछ रहे हैं आध्यात्मिकता क्यों चाहिए, हम हर रीति से सुखी है, हर रीति से सुखी है, हर रीति से सक्षम है, फिर हमें आध्यात्मिकता की आवश्यकता क्यों है? आध्यात्मिकता है तो विजडम मिलती रहती है और बुद्धि चार्ज होती रहती है। बुद्धि को यही विजडम तो चाहिए। ये विजडम आने से ही हम जीवन में सही निर्णय समय पर ले सकते हैं। आज जीवन की सफलता का आधार क्या है? सही समय पर सही डिसीशंस अगर है तो जीवन में सफलता है। जीवन में व्यक्ति असफल कब होता है? जब सही समय पर सही निर्णय नहीं लिए। और सही निर्णय क्यों नहीं लिए? क्योंकि उस वक्त बुद्धि दुविधा में फंसी थी। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान हमारे विवेक को शार्पन करती है, हमारे विवेक को तेज करती रहती है, जिसके लिए दूसरे समय दूसरे शब्द में कहा जाता है समय सूचकता हमारे अंदर आती है। कैसे? जब बुद्धि फोकस्ड है, क्लियर है, उसमें कंफ्यूजन के बादल नहीं है, तब जाकर के वो सही समय पर सही डिसीजंस ले सकती है। अगर कंफ्यूजन के बादल है तो सही समय पर सही डिसीजन लेने की समय सूचकता नहीं आ सकती है। और वही इंसान जीवन में फेलियर का अनुभव करता है। और उसके बाद जब कर्म में आते हैं तो कर्म आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देता है, जिसको कहते हैं संस्कार। कल भी हमने देखा संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। हर व्यक्ति इसलिए भिन्न है क्योंकि जैसा संस्कार वैसा स्वभाव, नेचर, और जैसा नेचर वैसे फीचर्स। आज दुनिया के अंदर करोड़ों व्यक्ति हैं, लेकिन एक के फीचर न मिले दूसरे से, क्योंकि एक का नेचर न मिले दूसरे से, क्योंकि एक का संस्कार न मिले दूसरे से, एक का कर्म न मिले दूसरे से। हर व्यक्ति भिन्न है। एक ही माँ पिता के 2 बच्चे होते हैं, माँ पिता खुद कहते हैं एक आज्ञाकारी है, एक तूफानी है, जबकि माँ पिता ने दोनों बच्चों को सब कुछ एक जैसे दिया, फिर भी बच्चों के अंदर ये भिन्नता क्यों आई? तो कहेंगे उसके संस्कार। वो संस्कार कौन से हैं? सबसे पहले प्रकार के संस्कार है ओरिजिनल संस्कार, जो ये सतो गुण के आधार पर है। जब ईश्वर के धाम से संसार में आते हैं तो आत्मा की बैटरी फुल चार्ज होती है, 7 गुण भरपूर होते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, दूसरे प्रकार के संस्कार दिखाई देने लगते हैं। और वो दूसरे प्रकार के संस्कार कौन से? पूर्व जन्म के संस्कार। कई बार हम सुनते हैं 3 साल का बच्चा कंप्यूटर चलाने लग गया, 5 साल का बच्चा गाड़ी चलाने लग गया, शास्त्रों के श्लोक बोलने लग गया। घर में किसी के अंदर ये विशेषता नहीं, लेकिन वो बच्चे में कहां से आई? तो कहेंगे पूर्व जन्म के संस्कारों का उदय हुआ। अब उसी में उदय हुआ, बाकी में नहीं हुआ? सभी में उदय होता है, इंटेंसिटी में फर्क है। किसी में बहुत पावरफुल इंटेंसिटी से बाहर आता है तो एक्सेप्शनली दिखाई देता है, कर्म में इंटरफियर होता रहता है, समझ में नहीं आता है। एक बार एक बहन थी जिसका छोटा बच्चा था, केजी में या 1st में पढ़ता था, रोज उसको स्पेलिंग सिखाती थी। बच्चा 40 पर आता था, उसको 40 लिखना नहीं आता था, 40 पर वो गलती कर देता था। माँ ने उसको कई बार समझाया। एक दिन वो बाजार गई सब्जी लेने के लिए, जब बाजार से आई तो देखा बच्चा बाहर खेल रहा है। दूसरे दिन उसकी एग्जाम थी, माँ को बड़ा गुस्सा आया, कल एग्जाम है, 40 लिखना तेरे को आता नहीं है अभी तक, चलो बाहर खेल रहा है, बैठो स्पेलिंग लिखो। वो सब्जी काटने लगी, बच्चा स्पेलिंग लिख रहा था, सामने बिठाया उसको। जैसे जैसे वो 40 पर आया, फिर से उसे गलती हो गई। माँ ने जैसे ही देखा, जो हाथ में चाकू था वही ठोस दिया। सत्य घटना है। बाद में खूब रोई, मेरा भाव नहीं था, मैं तो सिखाना चाहती थी, मैं मारना नहीं चाहती थी, पता नहीं कैसे ये हाथ चल गया, पता ही नहीं चला। खूब रोई, एक ही तो बच्चा था उसका, और इतना अधिक प्यार था उसको उस बच्चे से, इसीलिए वो बच्चे की छोटी गलती को नहीं देख पाती थी। लेकिन जब उसका हाथ चल गया तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, खूब रोई। सभी ने पूछा उसको ऐसे कैसे हो गया, का पता नहीं उस वक्त क्या हुआ, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आध्यात्मिकता ही उसका उत्तर देती है, और यही उत्तर देती है कि कोई जन्म का ये दो आत्माओं के बीच कर्मों का हिसाब किताब था जो इस जन्म में मां और बेटे के रूप में आकर चुक्त हुआ। और कोई साइंस नहीं जो इस घटना को एक्सप्लेन कर सके, यही एक उत्तर आता है। लेकिन इतने सालों के बाद, 35 साल की जब वो हुई उसके बाद ये घटना हुई, उस समय वो पूर्व जन्म का संस्कार इतनी पावरफुल इंटेंसिटी से बाहर आता है कि वो व्यक्ति अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकी। उसकी बुद्धि ने, विवेक ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वो पावरफुल इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि विवेक काम करे उसके पहले कर्म हो गया। बस यही एक एक्सप्लेनेशन होता है। तो पूर्व जन्म का संस्कार कभी भी जीवन के अंदर इंटरफियर करता रहता है प्रेजेंट कर्म के साथ। तीसरे प्रकार के संस्कार है खानदानी संस्कार, मात पिता बाप दादा के संस्कार। एक बच्चा 10-12 साल का बात बात में झूठ बोलता था, बहुत झूठ बोलता था। कई बार उसको झूठ बोलते देखा, पकड़ा। एक दिन मैंने उसको बुलाकर पूछा, तू झूठ क्यों बोलता है? हंसने लगा, जानता था झूठ बोलता हूं। मैंने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ झूठ बोलने से क्या मिला? कहता है कुछ नहीं। फिर क्यों झूठ बोलना चाहिए? कहते बस ऐसे ही निकल जाता है। काफी उसको समझाने का प्रयत्न कर रही थी मैं, कई कहानियां सुनाई, किस्से सुनाए कि झूठ बोलने से क्या होता है। वो बच्चा समझदार था, मेरी हर बात को समझ रहा था। आखिर लास्ट में कहता है, ठीक है आगे से झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा, प्रॉमिस करो कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कहता है, प्रॉमिस करता हूं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। एक बुजुर्ग भाई हमारी बातें सुन रहे थे, उनको हंसी आ गई। मैंने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? कहते, दीदी ये जो प्रॉमिस किया ना, ये भी झूठ है। ये कैसे झूठ है? तो कहा कि इसका दोष नहीं, उसका बाप भी ऐसा ही है, बिना मतलब ये झूठ बोलता ही है। और यही संस्कार बच्चे के अंदर है। और उसके दादा को भी देखा था, वो भी ऐसा ही था। ये खानदानी संस्कार है इनका। आपने समझा दिया तो खून बदली नहीं हो गया, इसीलिए ये कल फिर झूठ बोलेगा। कहने का भावार्थ, खानदानी संस्कार भी कैसे इफेक्ट करते हैं हमारी पर्सनालिटी पर। चौथा प्रकार का संस्कार जो इस जन्म में हम नए क्रिएट करते हैं, वो है संघ के रंग में आकर के, वातावरण में, प्रभाव में आकर के। इसलिए कहते हैं, जैसा संघ वैसा रंग। कई बार अच्छे घर के बच्चों को देखते हैं, जब हॉस्टल में पढ़ने के लिए रहते हैं, वहां उसके संग कैसे लग जाता है और उस संग में आकर के कैसा कर्म करने लगता है। जब माता पिता को पता चलता है और माता पिता उसको समझाना चाहते, बेटे ये संग छोड़ दो, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, वो माता पिता को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, संग को नहीं छोड़ सकता है, इतना प्रभावित है। और पांचवें प्रकार का संस्कार है दृढ़ता के संस्कार। जब व्यक्ति अंदर में कुछ ठान लेता है कि उसको ये करना ही है, बनना ही है, कोई संस्कार बीच में इंटरफियर नहीं कर सकता है, और उसको खत्म करते हुए वो दृढ़ता के आधार पर आगे बढ़ता ही चला जाता है और उसकी पर्सनालिटी को वैसे बना देता है जैसी दिशा उसको मिले। ये सात गुणों के आधार पर जो हमारे ओरिजिनल संस्कार है, उसको अगर दृढ़ता की शक्ति से जागृत किया जाता है, तो वो सातों गुण हमारे आसपास एक ओरा क्रिएट करते हैं, एक फील्ड क्रिएट करते हैं, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और ये ओरा के अंदर जब वो रहता है, वो सुरक्षित होता है, चार्ज्ड रहता है। इस ओरा में कोई भी व्यक्ति आ जाए तो वो भी उस वक्त चार्ज हो जाता है, इसीलिए तो कई बार महान आत्माओं के सानिध्य में बैठने को जब मिलता है, या उनका थोड़ा समय का सानिध्य भी मिल जाता है, तो उस वक्त हमारे मन की स्थिति भी शांत हो जाती है। कितना भी टेंशन क्यों ना हो, लेकिन उस वक्त टेंशन का अनुभव नहीं होता है, जैसे एक रिलैक्सेशन का अनुभव होता है। एक छोटे से बच्चे के संपर्क में चले जाओ, हंसता हुआ बच्चा आप अपने गोद में उठा लो, उस वक्त वो व्यक्ति अपने दुख दर्द टेंशन सब कुछ भूल जाता है। इतना पावरफुल ओरा है मेडिटेशन, माना यही पावरफुल ओरा को हमें विकसित करना है। जो हम जीवन में चलते चलते अपनी वास्तविकता से दूर हो गए हैं, मेडिटेशन माना क्या, इट्स अ जर्नी बैक टू द रियल सेल्फ, अपनी वास्तविकता के तरफ आने की एक आध्यात्मिक यात्रा, इसको कहा मेडिटेशन। ये स्पिरिचुअल जर्नी मन की जर्नी है, और ये मन की जर्नी वो सातों गुणों को विकसित करती है। कैसे? एज यू थिंक सो यू बिकम। इसलिए अभी थोड़ी क्षण के लिए हम आत्मचिंतन करेंगे, योग अभ्यास करेंगे, बैठेंगे, और वो आत्मा के सातों गुणों को विकसित करना है। हम अपने आसपास वो ओरा क्रिएट करेंगे जो एक शील्ड का काम करता है, जो दिन भर में भी हमें हर प्रकार की नेगेटिविटी से सुरक्षित रखता है। आज के युग में मेडिटेशन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बाहर वातावरण के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, वातावरण के अंदर यही नकारात्मकता का प्रदूषण है, जो हमारी जीवन शैली को भी नकारात्मक बना देते हैं। इसलिए अब कुछ क्षण के लिए सकारात्मक चिंतन के माध्यम से हम अपने आसपास ये मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेंगे, ताकि दिन भर हम जब उस वातावरण में जाते हैं, ये एक सूक्ष्म गति है, लेकिन ये सूक्ष्म गति को समझने की जरूरत है कि कैसे हमें ये सुरक्षित रखती है। तो चले, तो जैसे कल भी हमने आपको बताया था कि मेडिटेशन में बैठते हैं जब, तो एक बैठक है जिस पोस्चर के ऊपर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अति उत्तम आसन जो प्राचीन काल से माना गया है, ऋषि मुनियों ने जिसको एडॉप्ट किया है, वो है सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन। क्योंकि शरीर से एनर्जी निकलने के तीन द्वार, सबसे पहला द्वार ये पैर है। भारतीय संस्कृति के अंदर पहले घरों में भी सोफा सेट नहीं होते थे, बैठक ही होती थी। बिजनेस में भी जब व्यक्ति जाते थे, वहां पर भी गद्दी होती थी। स्कूल में पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाते थे, वहां भी नीचे बैठ के पढ़ना होता था। क्योंकि जब ये द्वार बंद हो जाता है, तो जो सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, वो समाया रहता है। लेकिन आजकल सब कुछ कुर्सी टेबल पर हो गया है, इसलिए एक तरफ सुनते जाते हैं, दूसरे तरफ अर्थिंग हो जाती है। सारे दिन में शक्ति इतनी हमारी नष्ट होती है, इसलिए दिन के अंत के बाद ऐसे थकावट का अनुभव होता है, जैसे शरीर में कोई ताकत ही नहीं रही है। क्योंकि सारा दिन हमारा या तो खड़े खड़े या कुर्सी टेबल पर, तो ड्रेनेज बहुत ज्यादा है और चार्जिंग नहीं हो रहा है। इसलिए जीवन शैली में जो परिवर्तन आया है, ये जीवन शैली में पुनः जो हमारी अच्छाइयां थी, उसको हमें वापस लाने की जरूरत है। दूसरा द्वार ये हार्ट, जहां से भी बहुत एनर्जी निकलती है तो ये द्वार को भी बंद करते, लॉक कर देते हैं, ताकि फ्लो ऑफ एनर्जी इज कांस्टेंट। और तीसरा द्वार है दृष्टि, आंखों को बंद नहीं करना है, आंखों को खुला रखना है, सामने जो दिव्य स्वरूप परमात्मा का दर्शाया है उसके ऊपर अपने दृष्टि को भी एकाग्र करना है, मन को भी एकाग्र करना है। और जो चिंतन में देती जाऊं, क्योंकि मन की रुचि है, उसको घूमना अच्छा लगता है, यहां बैठे बैठे कहां कहां होके आ जाते हैं, मन के लिए कोई बंधन नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस कैनॉट बिकम अ बैरियर फॉर द ह्यूमन माइंड। कितने साल पीछे भी जा सकता है, समय बैरियर नहीं बन सकता है। डिस्टेंस, यहां से अमेरिका भी मन पहुंच जाता है, एक सेकंड लगता है। इसलिए मन को ले चलते हैं एक यात्रा पर, कहां अपनी वास्तविकता की ओर। और वो वास्तविक स्थिति कहां थी कि जब हम ईश्वर के धाम में, परमधाम में निवास करते थे, वहां पर हम आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित थे। तो कुछ क्षण के लिए हम मन के अंदर यही विचार निर्मित करते हैं और मन और बुद्धि को ले चलते हैं एक यात्रा पर, परमधाम की ओर, उस दिव्य लोक में जो अंतर चक्षु है, जिससे बहुत कुछ देख सकते हैं, अपने वो वास्तविक स्वरूप को देखे, फील करे, खाली देखे नहीं, खाली सोचे नहीं, लेकिन उसको फील करे, आत्मा के सातों गुणों को फील करे, अनुभव करना है हमें, चले। तो इसलिए आत्मचिंतन आत्मा में वो शक्ति को विकसित करता है, उस शक्ति को उजागर करता है। तो वो आत्मशक्ति का अनुभव करने के लिए थोड़ी क्षणों के लिए अपने मन और बुद्धि को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं। अंतर चक्षु से स्वयं को देखे, भ्रुकुटि की मध्य में मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है, जो मैंने धारण किया है। संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने है। वास्तव में मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र से अलग हूं, न्यारी हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को ले चलते हैं एक यात्रा पर। पंच तत्व की दुनिया से दूर सूर्य चंद्र तारागण से भी दूर अनंत की ओर, परम धाम की ओर, जहां मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूं। मैं अपनी वास्तविकता में स्थित हूं। अंतरचक्षु से मैं अपने उस दिव्य स्वरूप को देख रही हूं। इस दिव्य लोक में मैं आत्मा संपूर्ण मुक्त अवस्था में हूं। न कोई बंधन है, न कोई बोझ है, स्वतंत्र हूं। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र हूं। ज्योति पुंज हो, मेरे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल है। उस प्रभा मंडल में मैं स्वयं को देखती हूं। कितना सुंदर स्वरूप है ये। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। मेरे मन की स्थिति शांत होती जा रही है। इसी शांति में सच्चा सुख समाया है, जो सुख अति इंद्रिय सुख है। यही मेरी वास्तविकता है। इसी शांति में परम आनंद समाया हुआ है। मैं आत्मा सत्चित आनंद स्वरूप हूं। इसी शांति में अनंत शक्तियां हैं। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। स्वयं में शक्ति का संचार कर रही हूं। कितना दिव्य, अलौकिक और शक्तिशाली अनुभव है ये। मैं आत्मा भीतर से सशक्त होती जा रही हूं। कुछ क्षण के लिए इस अनुभव में मन को स्थित करती हूं, एकाग्र करती हूं।